हरे कृष्णा धन प्रणाम जी।
हाँ, पीछे राधा गोपीनाथ के दर्शन हो रहे हैं, और अगर इतना धूम करने की शक्यता नहीं है, अदरवाइज कृष्ण के गले में एक पत्ता रखा है, एक बहुत सुंदर पत्र रखा हुआ है, पत्र मतलब लीफ, उस लीफ में राधा लिखा हुआ है। ये वो चित्रपट है जो मेरे पीछे है, उसके नीचे राधा, हाँ
लिख रहा है,
हाँ उसके नीचे राधा गोविंद जी का चित्रपट है, फोटोग्राफ है, मतलब डीटी का फोटोग्राफ है। उसके बाजू में जो मोर पंख है वो भांडीरवन के हैं, और उसके पीछे नीचे, उसके नीचे देखिए तुलसी महारानी रखी हुई है ना, वो भी पर्पल रंग के वस्त्र पहन के तुलसी महारानी आपको दर्शन दे रही है। तुलसी देखिए, हाँ
राधा गोपीनाथ जी पर्पल कलर में है, गोविंद जी भी पर्पल कलर में, तुलसी महारानी भी पर्पल कलर में,
हाँ बिल्कुल
सुंदर कॉम्बिनेशन।
तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, क्योंकि किसी भी प्रकार से भगवान के भक्तों का संग होना चाहिए, कि हमारा जीवन जो है ना इसमें सबसे शक्तिशाली और सबसे कृपालु और सबसे बोलते ना स्टडेड विथ मर्सी, ऐसे कोई चीज़ है तो वो भक्तों का संग है। इसलिए रामानंद राय ने कहा था कि दुनिया में प्रश्न पूछा गया था कि सबसे दुख भरी स्थिति क्या है दुनिया में, तो रामानंद राय ने उसका उत्तर दिया था कि भक्तों का संग ना होना, इससे बड़ी दुख की बात मैं जानता नहीं हूँ और कौन सी है। तो भक्त लोग कितने दयालु होते हैं, उनका उनका एक तो स्थिति, उनकी उपस्थिति जो है ना वो कितनी दुर्लभ होती है, और जो उपस्थिति दुर्लभ मिलती है वो कितनी दयालु होती है और कितनी कृपालु होती है, उसके अंदर से बड़े बड़े लोगों का बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए आप लोगों का धन्यवाद है, आप लोग भगवान की भक्ति का प्रयास कर रहे हो, भगवान की भक्ति के रास्ते में हो, और जो भी ज्योति भक्ति की हृदय में प्रज्वलित है उसका लाभ न जानते हुए भी लोगों को मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी और न देर रुकते हुए हम आपका आज का छोटा सा जो हमारा संभाषण है उसको हम शुरू करते हैं।
हम सभी का सौभाग्य है कि आज हमें प्रसंग मिल रहा है, और हम सभी आपका आज के सत्संग कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं। हरि बोल,
हरि बोल, जय हो, जय हो श्री राधे श्याम। कुछ लोगों को विनती ये है कि उन्होंने हमको सीलिंग दिखा के रखा है, तो वो भी जरा ठीक करें उसको, कुछ लोग सीलिंग दिखा रहे हैं तो उसको जरा अपना दर्शन दिखा दो तो अच्छा रहेगा। और हमारे
हमारे राम रूप बर्थडे भी है।
अरे वाह, मैं जानता था इस बात को, मैं बोलने वाला था। तो नित्यानंद प्रभु, नित्यानंद राम प्रभु को जन्मदिन की बहुत बहुत और हृदय से मनपूर्वक हार्दिक बधाई, और जन्मदिन जन्मदिन के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है, वो मैं आज को आज आपको एक सबको म्यूट कर दीजिए आप सबसे पहले तो अच्छा रहेगा। होस्ट कौन है आज का, कन्हैया प्रिय प्रभु है?
नहीं, हमारे सर्विसर वो रूपेश्वर गौरांग प्रभु
जो है उनको कहना सबको म्यूट कर ले, हाँ क्योंकि तो अभी मैं शुरू करने जा रहा हूँ तो और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो मैं कहने जा रहा था कि हैप्पी बर्थडे नाम का मैंने एक वीडियो बनाया है, वो हम अभी आज नित्यानंद राम प्रभु को भेंट दे देंगे, भेंट के रूप में भेज देंगे इंटरनेट से। और जन्मदिन ये बहुत ही चिंतन करने का दिन होता है, मनाते तो बहुत लोग हैं लेकिन चिंतन बहुत कम लोग करते हैं, तो जन्मदिन जो है ना वो बड़े गहरे चिंतन करने का दिन है, जीवन के उद्देश्य के विषय में, जीवन के विषय में, अभी हम कहाँ हैं, कहाँ पहुँच चुके हैं, कहाँ पहुँचना है, कितने दूर है, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए समय कितना बचा है, ये सब विचार करने का दिन है ये। बाकी लोग तो हमारे ऊपर कृपा कर ही देते हैं, हैप्पी बर्थडे बोलकर आशीर्वाद देते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसको स्वीकार करना है, लेकिन मन ही मन चिंतन करना बहुत आवश्यक है। तो इतनी छोटी सी बातें कहकर मैं भी अपने विचार प्रकट करने के लिए आरंभ करता हूँ। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूपक कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरि राम 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 हरे हरे। एक और जूम मीटिंग का नियम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें ये बहुत दिनों के बाद में शायद 7 दिन के बाद में 10 दिन के बाद में भक्तों को देखने का मौका मिलता है, तो जितना हो सके उतना वैष्णव दर्शन हम लोगों को दें वो बहुत अच्छा है। जितना हो सके उतना अगर वैष्णव वस्त्र में वैष्णव तिलक में और स्वच्छ उत्साही भाव में दर्शन देंगे तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आज का हमारा विषय ये है कि ऐश्वर्य वृंदावन में हमेशा परास्त होते रहता है, ये हमारे आज का विषय है। वृंदावन धाम जो है वो ऐसा अद्भुत भूमि है भगवान की, ऐसे विशेष रूप से विशेष भाव से विशेष योजना से बनाई गई है कि भगवान वहाँ जाना चाहते हैं तो ये सब कुछ भूल के जाना चाहते हैं। उनको ना वैकुंठ का अधिपति होने का जो ऐश्वर्य उनको साथ ले जाना नहीं है, उनको वहाँ पर किसी को ऐसा पहचानना भी नहीं है कि मैं भगवान हूँ, है ना। जैसे कोई बड़ा क्रिकेटर होता है ना वर्ल्ड चैम्पियन क्रिकेटर, उसको शॉपिंग करना होता है तो वो ऐसे कंट्री में जाता है जहाँ क्रिकेट कोई जानता ही नहीं है, Nobody will know him as a cricketer। तो वहाँ पर जाके अपने वो मोजा उसका जो सॉक्स है उसकी जो कंघी है उसके लिए कुछ शेविंग क्रीम है वो मेरे प्रेम से खरीद कर सकता है, क्योंकि कोई वहाँ पहचानता नहीं उसको। उसको अरे सर सिग्नेचर दो। उसको ना ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर Nobody knows him and he can be on his own, अपना तरफ से ज़िंदगी जीने के लिए वो वहाँ पर फ्री है कुछ दिनों के लिए क्यों ना हो। तो वैसे भगवान है ना एक तरह से वैकुंठ में रहकर सदैव ऐश्वर्य ग्लोरिफिकेशन स्तुतियाँ स्तुति पठन श्लोक पठन गौरव आरती पूजा ये सब चलते रहता है वहाँ पर, तो उनको ना इतना दिल से आनंद नहीं आता है। फिर वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि मैं अभी वृंदावन जाता हूँ और जिन जिन को वहाँ ले जाना है मुझे उनका सबसे पहले ना ये ज्ञान जो है जो कि मैं भगवान हूँ, आई एम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड स्टडेड विथ 6 opulences अनलिमिटेडली, ये जो उनको ज्ञान है ना ये पहले छीन लेता हूँ उनका मैं, ताकि ये कोई जाने ही नहीं कि मैं कौन हूँ। तो इसलिए व्रज में जो भी जन्म लेता है ना और या जो कोई आता है यशोदा माई है नंद महाराज है गोपियाँ हैं ग्वाल बाल अरे इन गौवे हैं या मोर है या तोता है ये सब लोग है ना इनका ज्ञान के भगवान भगवान है ये छीना हुआ है। दे हैव बीन बेरेफ्ट दे हैव बीन क्या कहते हैं द नॉलेज हैज बीन टेकन अवे फ्रॉम देम। फिर वो ब्रज में आते हैं ताकि वो जानती नहीं कि ये कन्हैया जो है वो भगवान है। बीच बीच में उनको थोड़ा डाउट आता है लेकिन फिर वो डाउट इस तरह से स्मैश हो जाता है कि भाई कहाँ से डाउट किया ऐसे लगते हैं लोगों को, जिस प्रकार से वो उसका नष्ट किया जाता है उसको उस डाउट को उस सत्य को, वो भी एक अद्भुत चीज़ है। तो हमारे लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि हमको भी वृंदावन जाना है ना, तो सब लोग जो है ना साधु लोग वृंदावन के महात्मा लोग क्या कहते हैं, अरे अपने रजोगुण तमोगुण को छोड़ के जाया करो। वो रजोगुण तमोगुण जो शहरों का होता है ना उसको साथ में लेकर ब्रज में जो जाया मत करो। ब्रज कहीं और रहेगा आप कहीं और रहेंगे, आपका शरीर ब्रज में रहेगा लेकिन आप आत्मा के स्वरूप में कहीं और रहोगे और ब्रज अपनी जगह पे रहेगा। मुझे एक थोड़ा सा फनी चीज़ याद आती है, मुझे लोग पूछते थे अभी ये ऑपरेशन के टाइम पे, सर हाउ इज़ द पेन, तो आई हैव टू गिव देम द फनी आंसर, आई हैव टू टेल देम दैट पेन इज इन इट्स ओन प्लेस, आई एम इन माई ओन प्लेस, तो दे वुड नॉट अंडरस्टैंड एग्जैक्टली मैं क्या कह रहा हूँ। तो मैं कहता था उसके अंदर कि देखो पेन अपनी जगह है, वहाँ पर आप जाके मत रहो, जब पेन की जगह रहोगे तो बहुत दर्द होगा आपको। अगर आप कहीं और रहोगे अपने मन से, वृंदावन रहोगे या कोई और किसी काम में मग्न रहोगे, तो पेन आपको नहीं छुएगा। तो द आंसर इज दैट पेन इज इन इट्स ओन प्लेस एंड आई एम इन माई ओन प्लेस। तो उसी तरह से अगर हम रजोगुण तमोगुण लेके जाएंगे ना, यहाँ के सारे विकार, सारे भोग वासनाएं, सब अपने मन में जो इच्छाएं चल रही है वो लेके जाएंगे ना वहां पर, तो फिर हम लोग रहेंगे कहीं और, ब्रज रहेगा अपनी जगह पे। तो अपने की ब्रज की यात्रा की इच्छा क्या होती है, पर्पस क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, कि हम भी ब्रज में रहे और ब्रज भी हमारे अंदर रहे, हम वही रहे जहाँ ब्रज है। इसका मतलब क्या होता है कि जो ब्रज की लहरें हैं, ब्रज का जो कॉन्शियसनेस है उसमें हम जुड़े रहें। आवर कॉन्शियसनेस शुड मैच विद द कॉन्शियसनेस ऑफ ब्रज, द ट्यूनिंग शुड टेक प्लेस। जब जो ट्यूनिंग होता है ना तो ब्रज में प्रवेश होता है। कोई रूम बुक करके या कोई टिकट बुक करके अपनी गाड़ी लेकर, भोजन की व्यवस्था हो गई, ट्रांसपोर्ट की भी हो गई, कथा करने वाला भी मिल गया, प्लान भी बन गया, अरे ये सब करने के बाद भी ब्रज में प्रवेश नहीं होगा और नहीं होता है, ऐसा मुमकिन है? ब्रज में प्रवेश तब होता है जब हमारी चेतना जो है ना वो ब्रज के चेतना के अनुकूल होकर हम जाते हैं, तो फिर ब्रज हमें कुछ कुछ दर्शन देता है, कुछ कुछ अनुभूति देता है, कुछ कुछ आनंद देता है। और वो आनंद जो है ना वो शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। जब कोई ब्रज के चेतना को छू गया और ब्रज में प्रवेश कर गया कुछ समय के लिए क्यों ना हो, फिर वो व्यक्ति को हृदय से अनुभूति होती है, दिव्य अनुभूति होती है। तो हमें वो प्रयास करना है कि हम ब्रज में केवल शरीर से न जाएं, केवल मन से न जाएं, केवल बुद्धि से न जाएं, आत्मा से जाएं। और आत्मा भी कैसी हो, जो प्रेम से भरी हो, सेवा भाव से भरी हो, नम्रता से भरी हो और ऐश्वर्य से मुक्त हो, कि मैं फलाना हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं यवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, ये सब जो भी कुछ ही टोपियाँ पहनते ना हम लोग, ये सब टोपियों के उतार कर ब्रज में जाना चाहिए। तब जाकर ब्रज से हमारा संपर्क होता है, फिर प्रवेश हो सकता है, फिर वहाँ में जो नेक्टर जो है, वहाँ पर जो अमृतमयी वहाँ का धारा जो है उसे भी हम स्पर्श कर सकते हैं। अभी देखिए हम अभी कुछ कथाओं को संक्षेप में कहने का प्रयास करेंगे। अभी हमारे भगवान शंकर है, देखो कैसे कैसे महान विभूति है भगवान शंकर। अरे वो रास का ऐलान हो गया तो पता चला उनको कैलाश पे, क्योंकि रास का जो ऐलान कैसा होता है, मुरली बजती है ना, तो मुरली बजती है तो सुनाई किसको पड़ती है, अरे जिनका हृदय शुद्ध है ना उनको ही वो मुरली सुनाई पड़ती है। चाहे वो आप उस लोक में हो, उस ब्रज में हो, या ब्रज के बाहर कैलाश में हो, या ब्रह्मा लोक में हो, कहीं भी हो, जिसका हृदय शुद्ध है ना उसको बराबर बांसुरी सुनाई पड़ती है, क्योंकि वो पुकारती है उन लोगों को जिनका हृदय शुद्ध है, पवित्र है, उसके योग्य है। तो कहीं भी है तो वो दिव्य जो आध्यात्मिक ध्वनि है वो सब उनके कानों पर पड़ जाती है। वैसे हमारे भोले बाबा के कान में पड़ गई कैलाश में, तो तुरंत है ना सब कुछ छोड़ के भागे, वो सीधे पहुंच गए रास मंडल के बाहर, वृंदावन धाम में जमुना किनारे, और ऐसा सीधा अंदर प्रवेश करने लगे। तो ललिता विशाखा आदि गोपियां थी वहां पर, अरे रुक ले, अरे कहां जा रहे बाबा, रास में जा रहे हैं। नहीं नहीं, यहाँ पर तो केवल पुरुषों को प्रवेश है, यहाँ पर कोई स्त्री, केवल स्त्री को प्रवेश है, कोई पुरुष को यहाँ पर प्रवेश नहीं है, एक ही पुरुष है अंदर, बाकी सब स्त्रियां हैं। तो उनके मंदिर में किंतु परंतु कुछ नहीं आया, कोई क्वेश्चनिंग मूड नहीं आया, ऐसा क्यों, हम लोग क्या कुछ ऐसे है क्या, वैसे है क्या, ऐसा कुछ नहीं, क्या करना है बताओ, हमें आना है अंदर, क्या करना है बताओ। तो कहते कि आपको स्त्री बनना पड़ेगा। तो बोले कैसे बनना होगा वो भी बता दो ना, अभी आप एक एक लाइन क्यों बताते हो, पूरा आंसर दे दो। तो उन्होंने कहा कि मानसरोवर जाओगे, डुबकी लगाओगे तो आपको गोपी का शरीर प्राप्त होगा। अरे ना आओ दिखा ना ताओ, सोचा भी नहीं कि पार्वती क्या बोलेगी, पार्वती का क्या मत होगा इसके विषय में, सीधे छलांग लगा कर गए, जमुना जी छलांग लगाई, पार लगाया, मानसरोवर में पहुंचे, वहां पर डुबकी लगाई, तुरंत एक सुंदर गोपी का शरीर प्राप्त हुआ। मानसरोवर तो देखो कैसी जगह है, वहां पर राजा रानी ने एक बार रूठ कर बैठ कर एक मान में अश्रु बहाए थे, क्योंकि कृष्ण भगवान उस दिन रास में देर से आए थे, मतलब जब तक वो वहां से मान करके निकल गए तब तक पहुंचे भी नहीं थे वहां पर। तो पार किया, जमुना जी वहां पर बैठी है, बहुत रोई, तो उसके गरम गरम अश्रुओं से वो मान सरोवर बना हुआ है, उसमें हमारे भोले बाबा ने डुबकी लगाई, लगाते ही गोपी शरीर प्राप्त हो गया। वैसे ही छलांग मार के जमुना जी के पार होकर इस तरफ आए जहाँ पर रास मंडल था। अभी देखो आते ही तो सारे लोग हंसते, हा 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 हा, देखो देखो कैसे आ गया, क्यों हंस रहे हैं, अरे इतनी सुंदर गोपी है, क्या हंसने के बाद क्या है, अरे वो सर पे सांप, गले में सांप, हाथ में सांप, कलाई में सांप, सब जगह सांप ही सांप, कुछ नाग कुछ सांप, अरे वो नाग थोड़ी गए थे उधर शरीर बदली करने के लिए, तो शरीर बदलने के लिए भावना से जो गए थे उनका शरीर परिवर्तित हो गया, और सांप तो ऐसे ही थे, वो ऐसे ही रह गए। अभी कोई सुंदर युवती, लावण्य संपन्न, सौंदर्य संपन्न युवती अगर सांप लटके हुए आएगी तो कैसा लगेगा। तो ये देखकर सब गोपियां हंसने लगी, उन्होंने वो बहुत अप्रिशिएट किया शिव को, देखो इतने बड़े महादेव हैं, कोई संकोच ही नहीं इनको, कोई परवाह ही नहीं है, कौन क्या सोचेगा, कौन क्या करेगा, क्या क्या लगेगा, कौन हंस रहा है, कौन रो रहा है, किसी की परवाह नहीं है, बस एक ही लक्ष्य है, हाँ व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही हम करूँ नंजना, एक लक्ष्य है उनका कि रास में सेवा करनी है बस। तो ललिता विशाखा बड़ी खुश हो गई, उनको देख प्रसन्न हो गई, उन्होंने ना अपने हाथ से ये शिवजी महाराज जो भी कन्या बने हैं उनका श्रृंगार किया, इतना सुंदर गोपी बना दिया उनको, बहुत ही सुंदर। अभी आप जानते हैं ना, अरे वो राधा रानी को श्रृंगार करती है, वो श्रृंगार करेंगी तो क्या स्थिति होगी श्रृंगार जिसका हो रहा है उसकी, बड़े सुंदर अद्भुत श्रृंगार करके फूल वूल माला अलंकार पहना के उनको हाथ पकड़ के रास मंडल के अंदर लेके गए। रास मंडल बहुत विशाल होता है, बहुत विशाल, उसमें अंदर बहुत सुंदर व्यवस्थाएं होती है, बहुत सुंदर क्या कहते हैं ज्योग्राफिकल अरेंजमेंट्स होता है उसके अंदर, उसके बीच में रास मंडल के बीच में राधा कृष्ण सिंहासन पर बैठे हुए हैं, और उनको हाथ में चामर दिया, और फिर हमारे गोपेश्वर महादेव जो गोपी ईश्वर हमारे गोपी बने हुए हैं उनको चामर डुलाते हैं। हाँ, चमर ढुलाबो कोबे हेरी बो मुख चंद्र राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, ना आनंद दे रहे जुगल जोड़ी को, और चमर ऐसे झुलाया तो दर्शन, यहाँ झुलाया तो दर्शन, यहाँ झुलाया तो दर्शन, क्या पर्पज होता है, चमर जब झुलता है बीच में दर्शन प्राप्त होता है। तो फिर उनको बाहर गया, बाहर भेज दिया गया वापस प्रसन्न होकर, और फिर राधा रानी ने भी कहा, गोपियों ने भी कहा कि अभी आप रास मंडल के बाहर बैठो और यहीं से रास का दर्शन करो, रास मंडल की रक्षा भी करो। तब से हमारे भोले बाबा वहाँ बैठे हुए हैं, गोपेश्वर महादेव बैठ के, इतना दयालु उनका दर्शन है वहाँ पर, इतना दयालु भाव है उनका, बड़े कृपालु शिव जी महाराज बैठे हुए हैं। अभी उसके बाद में हमारी लक्ष्मी जी भाग भाग के आई, कभी वैकुंठ छोड़ती नहीं है, कभी वैकुंठ क्या विष्णु के चरण नहीं छोड़ती कभी। तो ये जब आई तो वैसे ही आई, तो फिर रोका गोपियों ने, कहाँ जा रहे, रास में जा रहे हैं। बोला नहीं नहीं नहीं, आप नहीं प्रवेश कर सकती। बोले क्यों, मैं तो लक्ष्मी हूँ, वैकुंठ से आई हूँ, आपका नियम भी पालन कर रही हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मैं कोई पुरुष भी नहीं हूँ। बोलता नहीं, एक थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें आपको ना थोड़ा सा ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। बोले क्या ट्रेनिंग होती है तुम्हारे यहाँ पर? बोले हमारे गाय गौवें होती है, वो गोबर डालती है, फिर कभी मूत्र भी डालती है, फिर वो थोड़ा सा गौशाला साफ करना होता है, फिर उसका दूध भी निकालना होता है, फिर वो दूध को इकट्ठा करके उसको दही जमाना होता है, फिर उसका मंथन भी करना होता है, फिर वो मक्खन इकट्ठा करना होता है, फिर उसको मटके में रखना पड़ता है, फिर कभी कभी ये सब साफ सफाई करके गोमूत्र गोबर के कंडे बनाने पड़ते हैं, फिर उसको जाके सुखाना पड़ता है पेड़ पे पर्वत पे टील पे, फिर वो सुखा कर उसको इकट्ठा करना पड़ता है, फिर टोकरी में डाल के उसको लेके आना पड़ता है, फिर वो गोबर का एक घर बनाते हैं हम लोग बहुत अच्छा डिज़ाइन वाला, उसके अंदर गोबर के कंडे स्टॉक करना पड़ता है सब कुछ करना पड़ता है, ये गऊओं के पाँव धोने पड़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो सोच रहे अरे मैं थोड़ी करूँगा ये, मैं तो लक्ष्मी देवी हूँ, मैं तो वैकुंठवासिनी हूँ, ये मुझसे नहीं होगा। तो नहीं होगा तो थोड़ी हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं आपको नहीं आगा, ये नहीं होगा तो प्रवेश नहीं मिलेगा आपको। तो बहुत बहस करती है, बोले नहीं नहीं प्रवेश नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पर नहीं मिलेगा। तो लक्ष्मी देवी जाती है बेल वन में और वहां पर तपस्या करने बैठती है। अरे क्या कहें, अभी भी लोग बताते हैं कि वो अभी भी तपस्या कर रही है, अभी भी उनको एंट्री नहीं मिला है। उसके बाद में तात्पर्य क्या है इसका कि लक्ष्मी देवी जो थी ना है, वो लक्ष्मी देवी तो एक पात्र है भगवान की लीला का। ये मत समझना कि लक्ष्मी देवी योग्य नहीं थी और ऐसे थी हमारी थी, और लक्ष्मी देवी एक पात्र अदा कर रही है। वो हमको बता रही है कि लक्ष्मी भी होगी ना, वो ऐश्वर्य भाव को लेके आएगी तो वहां पर एंट्री नहीं मिलेगी उनको। लक्ष्मी देवी तो राधा रानी के रूप में अंदर तो ऑलरेडी है ना, लेकिन लक्ष्मी देवी के रूप में ऐश्वर्य संपन्न होकर वैकुंठ से जब उस भाव में प्रवेश कर रही है, तो उनको ये मैसेज दिया जा रहा है कि मैडम आपको ना ये ऐश्वर्य भाव लेके यहाँ एंट्री नहीं मिलेगी, ये जूता जो पहन के आए ना आप उसको उतारना पड़ेगा आपको। एक नम्र सेवक बनकर, एक सखी भाव सेवा भाव में, दास 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 अनुदास कोई भी निम्न सेवा करने के लिए तैयार, इस भाव में आना है अंदर, वही अंदर प्रवेश कर सकता है। अरे वहाँ पर तो मदर यशोदा को भी एंट्री नहीं थी, नंद महाराज को भी एंट्री नहीं थी, वहाँ पर तो गौवों को एंट्री नहीं है, ग्वाल बालों को एंट्री नहीं है, मोर को एंट्री जब चाहे तभी कर सकते हैं, पक्षी फूलों को, कुछ कल्प वृक्ष भी रहते हैं अंदर, लेकिन सब लोग गिने चुने होते हैं उसके अंदर, तो ऐश्वर्य का कोई प्रादुर्भाव नहीं वहाँ पर। फिर देखिए ब्रज में भगवान ने भी वहाँ बहुत बार कोशिश किया, कभी कभी कुछ कुछ बीच बीच में अपना ऐश्वर्य दिखाने का। कैसे देखो, अरे मट्टी खाने का बहाना किया, मट्टी खाया, मृद भक्षण लीला, भगवान को मट्टी बहुत प्रिय है वृंदावन की, क्योंकि भक्तों के चरण वहाँ स्पर्श करते ना, गोपियों के, ग्वाल बालों के, गैयाओं के, तो बहुत उस रज पर बहुत उनको ब्रज रज पर प्रेम है। अरे उन्होंने तो ब्रह्मा सम्मोहन लीला में बछड़े बनकर ना ब्रज के कोने कोने का कण कण जो रज है ना वो चाटा है उन्होंने अपने जीभ से। हम तो ब्रह्मांड लीला में सुनते हैं एक जगह खाया ब्रह्मांड घाट पे, लेकिन ब्रह्म सम्मोहन लीला में ग्वाल बाल के साथ में जो बछड़े थे वो भी कृष्ण थे, वो सारे बछड़ों के रूप में ब्रज के 84 कोस का कण कण का मट्टी चाटा है उन्होंने, इतना प्रेम है उनको। तो क्यों चाटा, क्योंकि उनको लीला करनी थी, ऐसा माँ को बताया, अरे अभी हाथ के कंगन को आरसी क्यों चाहिए, मुंह खोल के देख लो ना, पता ही कर लो खाया कि नहीं खाया। खाया तो था, जब मुंह खोला तो मट्टी रह गई बाजू में, दांतों को देखना उसमें, दांतों के अंदर छुपे हुए मट्टी को देखना रह गया बाजू में, और क्या दिखाई पड़ा, अरे ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। और कैसे ब्रह्मांड दिखाई पड़ा, खुद का ब्रह्मांड नहीं दिखाई पड़ा, सारे ब्रह्मांड दिखाई पड़े, और वो सारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु सब लोग दिखाई पड़ रहे, और ये पूरी सृष्टि दिखाई पड़ी, पूरा जो विरजा नदी दिखाई पड़ी, अरे सब महाविष्णु दिखाई पड़े, पर्वत दिखाई पड़े, नदियाँ दिखाई पड़ी, समुद्र दिखाई पड़े, सब पवित्र स्थान, सब लोक, क्या नहीं दिखाई पड़ा उसमें। और ये अपने आप को भी दिख रही है कि वो कृष्ण भी दिखाई पड़े, वो भी उसके मुंह में झांकते हुए दिखाई पड़ रही है। तो बाप रे, ये तो भगवान लगता है, मैंने डांटा इसको कितनी बार, अरे मैंने डंडा दिखाया उसको कितनी बार, उसने शरारत किया कितनी बार, उसको सबक सिखाने के लिए या शिक्षा देने के लिए मैंने कितना उसको कठोर शब्द उच्चारण किए, अरे कहीं भगवान तो नहीं है, लगता है भगवान ही है। तुरंत श्लोकों का उच्चारण शुरू हुआ हाथ जोड़कर, अरे भगवान को लगा गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, मैं थोड़ी यहाँ पर वैकुंठ में ये श्लोकों को सुनने के लिए आया हूँ, मैं तो डांट खाने के लिए आया हूँ, तुरंत वो बंद कर दिया है ना। अरे वो ऐसी माया भगवान की ना, जगन मोहिनी माया कहते हैं उसको, वो दशम स्कंद में उसका वर्णन है, जगन मोहिनी माया एक श्लोक में ही वर्णन है। जगन मोहिनी माता मतलब क्या है, सारा जो ज्ञान है ना वो छीन लेता है। अभी कुछ ज्ञान थोड़ा बहुत दिया ना, थोड़ा समय के लिए, थोड़ा सा बिविल्डर कर दिया, थोड़ा सा चकित कर दिया उनको, लेकिन चकित होने के बाद ज़्यादा ही कुछ परिणाम हुआ, बंद कर दिया। अरे मुंह बंद करते ही भूल गए, यशोदा माई भूल गई, क्या देखा अंदर कुछ देर पहले, क्या भौचक्की रह गई थी वो, भूल गए, तुरंत गोद में लिया और एक स्माइल दिया बहुत बढ़िया सा, मासूम सा, तुरंत गोद में ले लिया, अरे मेरा बालक मेरा बालक। कोशिश किया भगवान ने ऐश्वर्य को प्रकाशित करने का, लेकिन वो माधुर्य का प्रभाव ब्रज में इतना है कि बेचारे ऐश्वर्य संपन्न कृष्ण जो है ना, वो भी अपना ऐश्वर्य ज्यादा देर भगवान टिका नहीं पाते वृंदावन धाम में। वो होता है ना, मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूँ। पिछले आई कैंप में मैं बरसाने में था, बहुत ज़्यादा ठंड थी। मैं तो ठंड को बहुत पसंद करता हूँ मैं, लेकिन इस बार तो ठंड ऐसी थी कि मैं भी कांप रहा था। एक दिन 7 दिन तो बीच में ऐसे रहे कि सब कुछ करके भी मैं रूम में कांपता था। तो मैं ना अगरबत्ती लगाया करता था, एक मुझे बहुत खुशबू से प्रेम है, तो मैं अलग अलग मसाला अगरबत्ती लगाता हूँ, तो लगाया था। तो कुछ देर बाद अगरबत्ती बुझ जाती थी, बोले ये क्या चल रहा है, वापस लाइटर जलाओ, अगरबत्ती को जलाओ। कुछ देर बाद फिर बुझ जाती थी। ऐसे मैंने बहुत दिन देखा। फिर मुझे ध्यान में आया कि अगरबत्ती का जो जली हुई स्थिति है ना ऊपर वाली, वो इतनी कमज़ोर है, बाहर में इतनी ठंड धुंध भरी ठंड भरी हुई है। तो बार बार वो जो वातावरण की धुंध भरी ठंड थी ना, वो अगरबत्ती को बुझाती थी। मतलब क्या हुआ कि ठंड का प्रभाव इतना है कि अगरबत्ती का जो जला हुआ हिस्सा है वो जला हुआ नहीं रह सकता है। उसी तरह से ये जो भगवान का प्रयास है ना ऐश्वर्य दिखाने का, वो अगरबत्ती के जले हुए नोक की तरह है। और ये जो ठंड भरी धुंध भरी हवा है ना, ये वृंदावन धाम का माधुर्य भाव है। वो इतना प्रभावी है कि इसमें से इतनी सी अगरबत्ती की जो नोक है ना, वो टिक नहीं सकती, उधर बुझ जाती है वो। कितना भी प्रयास करो बुझ जाती है वो। तो वैसे ब्रज की स्थिति है, यहाँ पर माधुर्य प्रेम भगवान का जो है वो इतना इतना प्रभावी है, इतना संपृक्त है, सैचुरेटेड कंडीशन में है कि आप जितना चाहे ऐश्वर्य दिखाओगे ना, वो सब बेकार की बातें हैं, तो नष्ट होने वाली चीज़ें हैं। वो भगवान उसको खड़ा ही नहीं करते वहाँ पर। अभी देखो उसको वो ब्रजभाषा में कहते हैं विस्मय लीला। हाँ, भगवान ने 7 वर्ष के बालक के रूप में 7 दिन और 7 रात इतने बड़े विशाल गोवर्धन को धारण किया, वो भी एक उंगली में। हाँ, अपने शरीर के कमज़ोर हिस्सा जो होता है ना, बाएं हाथ का लास्ट उंगली, उससे वो पूरे गोवर्धन को उठाया उन्होंने। अभी चमत्कार है कि नहीं, ऐश्वर्य तो दिखाया ना उन्होंने। अरे बालक कोई उठाता है क्या? बच्चे ने भी पूछा, अरे काना का करोगे अभी, तुम का करोगे? तो वो कहते हैं मैं गिरिराज को उठाऊंगो। तो बोला अच्छा, इतना सो बालक कैसे उठाओगे? तो उन्होंने ना उधर एक पेड़ था कदम का, वो पेड़ को ऐसा ना उखाड़ दिया। पहले एक तो बालक तो उखाड़ सकता नहीं है, ऐसे उखाड़ दिया उसको। और इतने बड़े विशाल पेड़ को ना, इतने बड़े उसका जो था बुंधा कहते हैं उसको, ट्रंक, उसको ऐसे ट्विस्ट कर दिया, पूरा निचोड़ दिया उसको। बस देखते रहे सब लोग, अरे ये कैसे कर दिया उसने? जैसे औरतें अपनी साड़ी को निचोड़ते ना धोने के बाद, पूरा पेड़ को ही निचोड़ दिया। अरे तो बोले हाँ, अभी तुम लगता है उठा सकते हो। पहले लगा था समझो, अभी ये इधर तेजना बैठी हुई है, और तेजना की मैथिली गोद में है, और मैथिली तेजना को बोलेगी मम्मी मैं ना अभी गोवर्धन को उठाऊंगी। तो क्या करेंगे दोनों? अरे हंसेंगे पेट हाथ पकड़ के, बाकी लोग भी हंसेंगे, वाह वाह क्या बात है, बढ़िया बात है, देखो 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 गोवर्धन को उठाने की बात कर रही है, ये पर्वत को मैं उठाऊंगी मम्मी। तो वैसे ही कृष्ण ने बोला, अरे मैं तो पर्वत को उठाऊंगा। सब लोग हंसे थे उस समय, बोला आप लोग बारिश आ रही रोने का समय है, लेकिन थोड़े बड़े हंसे कि भाई गोवर्धन को कैसे उठाओगे। तो प्रमाण देने के लिए उन्होंने वो पेड़ को निचोड़ दिया, उसका नाम क्या है, ऐठा कदम। थोड़ा बहुत ऐश्वर्य उधर भी दिखा दिया, उधर पच गया वो। उसके बाद में गोवर्धन को उठाया, अरे 7 दिन 7 रात। बहुतों को लगा ऐसे कि अरे नहीं बेचारा अकेले हाथ कैसे पकड़ेगा, हम भी डंडा देंगे उसको, जरा सपोर्ट करेंगे। तो बहुत सारी लड़ाई उसके अंदर हुई, वो कभी आपको अलग बताएंगे क्या क्या उसके अंदर हुआ नीचे, वो पूरे एक अरे पूरे प्रवचन का विषय है वो गोवर्धन के तले क्या हुआ, व्हाट हैपेंड बिलो गोवर्धन इन गोवर्धन लीला, सब्जेक्ट मैटर फॉर डिफरेंट लेक्चर। एनीवेज खत्म हो गया लीला। क्या करते थे रोज शाम को ना, चौरासी खंबा नाम के एक बहुत अद्भुत जगह ब्रज में होती है, वो गोकुल में भी है, नंदगांव में भी है, कामेवन में है, जहाँ जहाँ हमारे नंद बाबा रहे ना, वहाँ पर सब जगह पर चौरासी खंबा नाम की जगह होती है। वहाँ पर क्या करते हैं सब ग्वाल बाल, बड़े बड़े बुजुर्ग जो है ना, वो सब आते हैं, बैठते हैं, आज क्या हुआ सब डिस्कस करते हैं, कृष्ण ने आज क्या किया, कोई डेंजरस काम तो नहीं किया, कोई अच्छा काम किया, कोई कुछ अगर कोई लक्षणीय कोई सूचना है, कोई कंसर्न है कि हमारा बालक बहुत नटखट है, कि पता नहीं क्या माटी खाता है, कभी क्या करता है, तो ये सब चीज़ की डिस्कशन वहाँ करते हैं। और एक निर्णय लेते हैं कि भाई चलो कल ये करना है अपने को, फिर वापस कल बैठते हैं शाम को, फिर डिस्कस करते हैं कि आज क्या हुआ, तो ये हमारी बैठक है, उसको बैठक है, रोज चर्चा करते हैं। तो ये जब गोवर्धन को उठाया ना, उसके बाद में जब घर गए, शांति हो गया सब कुछ, वो तो आ गए चौरासी खंबा में, वहाँ बैठ के क्या चर्चा हुआ, अरे नंद बाबा तेरो बालक तो बड़ो देवता लगो है। तो नंद बाबा, नंद बाबा तो ये देवता है, इसको देवता कहते हैं, कोई नियम नहीं, कुछ शरारत इतने करता है वो जाके कि दूध नहीं दी मिला, अगर मक्खन नहीं मिला तो जाके ना दूसरों के घर में जाके बच्चों जो पलने में सो रहे उनको चिमटा निकालता है, ये चिमटा निकालता है, कान में पानी डालता है, और ये भी करके मन नहीं समाप्त तो भर गया उसका, तो फिर वो पेशाब कर देता है उसके घर पे। ये कोई देवता के लक्षण है क्या? कोई सुना आपने देवता ऐसे करता है कभी घर में जाके पेशाब करता है किसी? फिर वो कह रहे बड़े, अरे बड़े ऋषि होगो, ऋषि मुनि होगो। ऋषि मुनि को तो भाई मन में इतना नियंत्रण होता है, कितना मन संतुलित होता है उनका, एक जगह बैठ के ध्यान करते हैं, इतना व्यवहार उनका अच्छा होता है। इसको देखो, आज इसके घर में गया चोरी करके आया, उसके घर में गया चोरी करके आया, इसका ये मणि चुरा लिया, राधा रानी की बात करते करते इधर का मणि निकाल दिया, उधर का मणि, कान का कुंडल निकाल दिया, वो ढूंढ रही बेचारी कहाँ गया कुंडल, फिर बोलेगा अरे वो अपने आप अपना हमारा हाथ ऑटोमेटिक कैसे घूमते गया तुम्हारे कान के पास और कुंडल निकाल के जेब में चला गया, माफी चाहता हूँ। ये कोई मुनि है ऐसे ना, जिस जिसने बोला फिर बोला कि इसको साधु होगा, कोई तपस्वी होगा, कोई सिद्ध पुरुष होगा। अरे कैसा सिद्ध पुरुष, हाँ जरा सी भूख लगेगी ना तो इतना आतंक मचाता है, और कैसा मुनि और कैसा देवता, अरे जरा सी आकाश में गड़गड़ाहट होती है तो गोद में भाग के आता है, मैया मुझे डर लग रो है। अरे कैसा देवता, कैसा सिद्ध पुरुष, कैसा महात्मा, कैसा कौन। और ये जब कह रहे हैं ना एक एक व्यक्ति, नंद बाबा उस बात को काट रहे हैं, इतना माधुर्य का वात्सल्य का प्रभाव है कि एक भी ऐश्वर्य वाली बात बाल बाल बोल रहे हैं और ये काटते जा रहे हैं, और बाद में क्या हो रहा है मालूम है, एंड में क्या हुआ, अरे सब लोग ना नंद महाराज के क्या कहते हैं उसको एक्सप्लेनेशन की वजह से ना ऐसा गिर गए, अपने आसन से गिर गए जमीन पर, लोट पोट होकर पेट पकड़ पकड़ के हंस रहे हैं कि ये लाला हमारा जो है भूल गए सब, लकी कोई देवता बोल रहा है, कोई सिद्ध पुरुष बोल रहा है, कोई महात्मा बोल रहा है, सब भूल गए। तो तात्पर्य क्या है कि कुछ कुछ ऐश्वर्य वाचा में प्रकट होने का प्रयास कर रहा है, और माधुर्य जो इन इन ग्वाल बालों के खास करके नंद बाबा के हृदय में छुपा हुआ है वो डिफीट कर रहा है उसको, कोई माधुर्य टिकी नहीं पाता है। वो बोलते कि अरे वो तो इतना बड़ा देवता है, तो बोलते क्या देवता डरते हैं क्या वो आकाश के गड़गड़ाहट से, ऐसे हर एक बात को काट देते वो। फिर आगे देखो चंद्र सरोवर में भगवान, अभी देखो कितना सुंदर वसंत का ऋतु चल रहा है, हाँ हम लोग तो गर्मी में तड़प रहे हैं लेकिन बहुत सुंदर वसंत का ऋतु चल रहा है, और वो चैत्र वैशाख, वैशाख भी समाप्त हो गया अभी बाय द वे, अभी ज्येष्ठ चालू हो गया है, तो लेकिन चैत्र वैशाख में ना श्री कृष्ण भगवान ने वासंती रास किया था, वसंत ऋतु का रास जो है वो चैत्र वैशाख में किया था। और जब बलराम जी आए थे ना कृष्ण का संदेश लेकर मथुरा द्वारका से आए थे, तो उन्होंने भी चैत्र वैशाख में वहां पर निवास किया था और अपने गोपियों के साथ में रास रचाया था। तो ये वासंती रास में भगवान ने गोवर्धन के पास में रास किया, तो आप जानते हैं इतना अद्भुत रास किया, उसमें तो अश्रु बहे, शरीर से दिव्य स्वेद बिंदु निकले, और इतना सुंदर ताल, इतना सुंदर सुर, इतना सुंदर वाद्य, इतना सुंदर जो भी, और कैसे ऐसे नहीं क्योंकि तबला बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है, कोई कुछ और वाद्य बजा रहा है, वाद्य क्या है, एक तो कृष्ण की मुरली है, दूसरा गोपियों के कंगन है, और तीसरा गोपियों की पायल है, बस इसके अलावा कोई उधर म्यूजिक नहीं है, ये तीनों चीज़ों से म्यूजिक बज रही है, और उस दिव्य संगीत के प्रभाव से देवता लोग जो बाकी संगीत में जो तज्ञ होते ना, बहुत एक्सपर्ट होते ना, क्या कहते हैं कुशल विशारद होते हैं उसके अंदर, कोई गंधर्व है, कोई किम पुरुष है, कोई यक्ष है, कोई बहुत सारे संगीत के विशेषज्ञ लोग रहते हैं वहाँ पर, वो अपना अपना वाद्य लेकर वहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मुरली वाला और जो पायल वाला और जो कंगन वाला जो सुर है ना, उससे हम मिलाकर कुछ जोड़ दें उनको, शायद कुछ सपोर्ट करें उस म्यूज़िक को। अरे वो तो मैंने कहा ना, वो पेन अपनी जगह पर है, मैं अपनी जगह पर, वैसे वो उनका जो ताल था ना मुरली का, और वो अपनी जगह पे था और इनका अपनी जगह पे था, दोनों बजते रहे लेकिन कभी तालमेल हुआ ही नहीं, दे केप्ट ऑन ट्राइंग टू मैच द म्यूजिकल मेलोडी विद द मेलोडी ऑफ फ्लूट एंड बैंगल्स एंड एंकल बेल्स, दे नेवर मैच्ड, दे जस्ट केप्ट ऑन यूजलेसली अटेम्प्टिंग टू मैच दैट मेलेडी, बट दे नेवर कुड मैच एंड देवर हैप्पी इन देयर ओन अटेम्प्ट ओनली एंड दे कीप डांसिंग ओनली इन द स्काइज. इन द मीन टाइम चंद्र जो है ना, उनके पास ना अमृत का स्टॉक होता है. दे आर इज लाइक ऑफिशियल स्टॉक, ऑफिशियल ट्रेजरी ऑफ अमृत फ्रॉम देवताज. तो इधर वो अश्रु बहने लगे, दिव्य स्वेद करोड़ों गोपियों का बहने लगा, तो तालाब सा तैयार हो गया. तो वो चंद्र ने क्या किया, उसमें अमृत डाल दिया. फिर और डांस तो चलता रहा, डांस चलता रहा. तो फिर चंद्र जो है ना, वो इतने ऐसे इंस्पायर हो गए ना, इतने प्रभावित हो गए, इतने भाव विभोर हो गए कि चंद्र जो है ना उसके अंदर पिघल गए, उस जल के अंदर. इसलिए उसका नाम पड़ा चंद्र सरोवर. वो अष्टकोनी चंद्र सरोवर जो है ना, वो पेठा गांव में है उधर. बहुत सुंदर, कभी आइए हमारे साथ, बहुत आनंद वाली जगह है, बहुत दिव्य स्थान है जहाँ पर. उस चंद्र सरोवर के आसपास भी बहुत सारे स्थान हैं. एनीवेज, पॉइंट वो नहीं अपना आज का. पॉइंट ये है कि बीच में फिर वैसे ही गोपियों को वैसे ही थोड़ा सा मान हो गया कि हम कितने स्पेशल हैं. हाँ, अद्भुत रूप धारण किए थे भगवान ने, हर एक गोपी के साथ में एक एक कृष्ण थे. तो उनको लगा, अरे सबको छोड़कर मेरे साथ नाच कर रहे हैं. थोड़ा सा हो गया उनको अहंकार, अब भगवान थोड़ा अभी थोड़ा आनंद लेते हैं. अदृश्य हो गए वो. और इस बार क्या किया, अदृश्य हो गए. अदृश्य होकर एक जगह पे जाकर चतुर्भुज नारायण का वैकुंठ वाला रूप धारण करके, ऐश्वर्य संपन्न रूप धारण करके खड़े हो गए रास्ते में. अब जैसे ही वो वैकुंठ वाले, वो एक्चुअली वो जो रूप धारण किया था ना, वो थे क्षीर उदक शाही विष्णु. इसका क्या प्रमाण है कि हम कैसे ये कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही वो प्रकट हो गए ना, उनके नीचे पैर के नीचे कमल उत्पन्न हो गया. और वो कमल कहाँ उत्पन्न हो गया, क्षीर सागर में, मतलब क्षीर सागर प्रकट हो गया उनके चरणों के तले जहाँ पर वो खड़े हो गए थे. इसलिए वो क्षीर उदक शाही विष्णु हैं, क्योंकि आज भी वहाँ पर जो कुंड है उसको नाम है क्षीर सागर कुंड. बड़ा विशाल और बड़ा नेत्र दीपक सुंदर कुंड है वो. तो खड़े हो गए चार भुजा वाले, शंख चक्र पद्म धारण करके, पूरे ऐश्वर्य के साथ पूरा तेज फैल रहा है सब जगह पर चारों ओर. और गोपियाँ अपने व्याकुल होकर गीत गाते हुए आ रही है, यहाँ वहाँ देख रही है. अचानक विष्णु का दर्शन होता है, तो विष्णु को प्रणाम करते हैं. और वो अभी आप लोग अगर विष्णु को मिलेंगे, समझो अचानक अभी आप चांदनी चौक गए, समझो अभी तो जा नहीं सकते हैं कोरोना की वजह से, लेकिन समझो चांदनी चौक गए और अचानक रास्ते में विष्णु मिले आपको, तो क्या करेंगे आप लोग? अरे दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे, जो भी कुछ याद है, पुरुष सूक्त ब्रह्म संहिता जो भी आएगा छोटा फूटा बोलेंगे. बोले भगवान माफ करना, याद नहीं आ रहा है अभी इन मौके पे, इतना भाव विभोर हो गए, कुछ लोग वो याद नहीं आ रहे हैं, दिल का भाव स्वीकार कर लो, दंडवत प्रणाम महाराज, दंडवत प्रणाम, थैंक यू वेरी मच. ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे आप प्रयास, थोड़ा समय बीतेगा उसके अंदर. अरे हमारी गोपियाँ कैसे ना एकदम फोकस्ड रहती है, फोकस्ड, उनका ध्यान कृष्ण पर फोकस्ड है. उन्होंने शिष्टाचार तो किया वैकुंठ वाले कृष्ण को, विष्णु को देखकर दंडवत प्रणाम महाराज जी. कई हमारे कृष्ण को देखा है क्या आपने? जैसे आप चांदनी चौक गए और विष्णु मिले, तो आप बोलेंगे महाराज जी कोई वो एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए था, पता है कहाँ मिलता है यहाँ पर? ऐसा विष्णु को पूछेंगे तो विष्णु को कैसा लगेगा? चांदनी चौक में आए थे स्क्रू ड्राइवर ढूंढने के लिए और नहीं मिल रहा था, तो विष्णु को ही पूछ लिया आपने, ऐसी बात हुई ना ये. तो ये ग्वाल बाल के बारे में पूछ रहे, तो विष्णु को भी ऐसा भाव विभोर हो गए विष्णु के रूप में कृष्ण को. उन्होंने चार वाले ये भुजाओं में से एक भुजा यूज किया, बोला कि इस तरफ गए, तो सब गोपियां भागी, विष्णु को छोड़कर भाग गई वो कृष्ण को ढूंढने के लिए. और फिर देखो राधा रानी एंड में आती है. हाँ राधा रानी में आती है, तो वो क्या ना, वो एक भंवरे से बात कर रही है, वो भंवरा गुंजन कर रहा है, और वो कृष्ण समझकर उससे बात कर रही है, उसको कठोर शब्द भी बोल रही है, कभी प्रेम से बोल रही है, कभी डांट रही है, कभी कुछ कर रही है. और वो करते 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 वो आ गई वो चतुर्भुज विष्णु वाले दर्शन के पास. तो प्रणाम किया, महाराज प्रणाम. पूछते हैं तुमने हमारे कृष्ण को देखा है क्या? अभी देखो गोपियों ने भी पूछा था कि कहीं तुमने हमारे कान्हा को देखा है, तो उन्होंने एक हाथ से बोला था इस तरफ चले जाओ. लेकिन राधा रानी ने जो वही बात पूछी ना, तो उसमें बड़ा अंतर था. ऐसे भाव से पूछा ना, इससे उसकी अवस्था को देखकर, उसके भाव से देखकर जब सुना उन्होंने, तो बेचारे चतुर्भुज बने हुए कृष्ण के दो भुजाएं गायब हो गई, पिघल गई वो सब. उनका जो कहता ना आडंबर था ना, खड़ा किया हुआ चार भुजा वाले, अलंकार वाले, मुकुट वाले, वैदूर्य मणि, कौस्तुभ मणि, ऐसे सब पहना के आए थे ना, वो सब गायब हो गया. उनका दो भुजाएं पिघल गई, शंख चक्र गद्म पद्म गदा गायब हो गया, और दो भुजा वाले बन गए वो, आउट ऑफ हिज कंट्रोल. बोलो ही डिड नॉट नो, उनको समझ में नहीं आया कि मैं ये चतुर्भुज वाला दो भुज कब बन गया। मतलब चतुर्भुज वाला दर्शन से दो भुज वाला बनने की स्थिति आने की जो प्रक्रिया थी वो उनके नियंत्रण के बाहर हुई। वो प्रक्रिया किसने की? वो प्रक्रिया जबरदस्ती राधा रानी के प्रेम ने उनके ऊपर की, और जिस उसकी वजह से क्या हुआ, ये प्रक्रिया होते हुए उनको समझ में नहीं आया कि ऐसे कैसे हो रहा है, और उनके कंट्रोल के बाहर चतुर्भुज वाले जो विष्णु थे, कृष्ण बने हुए थे, वो वापस कृष्ण के रूप में आए। देखो ये है माधुर्य, यह है माधुर्य की शक्ति। हाँ, साक्षात परम शक्तिमान भगवान, परम ऐश्वर्य संपन्न, षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान अपनी पूरी ताकत के साथ में वहां पर विष्णु बनकर खड़े हुए हैं, लेकिन अपने विष्णु वाले रूप को ब्रज में मेंटेन करना उनके बस में नहीं है, नहीं है उनके बस में। हो गए दो भुजा वाले और मिलन हो गया कृष्ण का राधा रानी का। कहने का तात्पर्य क्या है कि ब्रजवासी भक्तों के माधुर्य के सामने ये हमारे कन्हैया का ऐश्वर्य टिक नहीं पाता है, कितना भी कोशिश करो समाप्त हो जाता है, अदृश्य हो जाता है, नष्ट हो जाता है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, सब जानते हैं। देखो वो नंद बाबा का चोरी किया ना वैकुंठ वाले, सॉरी वरुण के सैनिकों ने आकर वो एकादशी का वाला मामला कर दिया ना कि भाई जल्दी आ गए ये ब्रह्मा मुहूर्त शुरू होने के पहले ही नदी में घुस गए, तो वो बहाना करके उन्होंने उनको अरेस्ट कर लिया और वो ले गए वरुण लोक में और उनको अरेस्ट के रूप में रखा था। तो कृष्ण भगवान, अभी बड़ी लंबी कहानी है, बताएंगे कभी डिटेल में आपको, लेकिन तात्पर्य यह है कि भगवान गए और भगवान जब भी पहुँचे उधर तुरंत वो सब भगवान को दंडवत प्रणाम किया और तुरंत वो सिंहासन पे बिठाया भगवान को, उधर अरेस्ट किए हुए नंद बाबा को मुक्त कर दिया, फिर बहुत तारीफ किया, अरे अरुण देव ने उनका पूजा किया। अभी क्या हो रहा है इसका मतलब, इसका मतलब भगवान का जो ऐश्वर्य है वो प्रकट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक देवता जो वरुण देवता है उसका दर्शन तो नंद महाराज ने किया और पहचानते भी उसको कि वरुण देवता है, इतने महान देवता है, और मेरा अपराध हुआ तो मुझे अरेस्ट भी किया हुआ है। अरे वही देवता जो मुझे अरेस्ट करके लेके आए ये बालक के पिताजी को, और वो बालक को लेके आए तो उसको वंदन कर रहा है, पूजन कर रहा है, दंडवत प्रणाम, चरण छू रहा है, अपने सिंहासन पे बिठा रहा है, उसको आरती उतार रहा है, उसको स्तुति कर रहा है, श्लोक बोल रहा है, उसका भोग लगा रहा है उसको। आश्चर्यचकित हो गए वो नंद महाराज, अरे मेरा कहना क्या है, कि समझ में नहीं आ रहा है। तो फिर नंद महाराज का भी सत्कार किया और बड़े प्रेम से विदा किया, बड़ी क्षमा मांगी। नंद मामा तो हैरान हो गए, क्या रहस्य क्या है इस बात का, समझ में नहीं आ रहा है उनको। लेकिन क्या हुआ ना, जब वो लौट के आ रहे थे ना तो नंद बाबा को भगवान ने वैकुंठ का दर्शन कराया। अब ये बड़ी अद्भुत बात है, वैकुंठ का दर्शन कराया, बड़े नंद बाबा खुश हो गए, फिर लौट के आए, फिर ये जल से बाहर निकले। और पता है एक विशेष बात कि जल से बाहर निकले ना तो दोनों के कपड़े एकदम सूखे थे, और क्योंकि नदी किनारे सब बाल बाल खड़े ना, अरे कहाँ गयो काना हमारो, बाबा तो गयो ये भी गयो, सब लोग खड़े उधर। आके देखा सुखरूप आ गए, बहुत मतलब बढ़िया तरीके से ऐसे आनंद से लौट गए, लेकिन देखो वस्त्र तो सूखे इनके। तो खैर कोई बात नहीं, तो नंद बाबा भी कैसे है, बोले हमने वैकुंठ का दर्शन कियो, सबको बता रहे हैं। अभी देखो किसी अगर गाँव के आदमी को समझा आपने बम्बई का समुद्र दिखाया, बोलेगा राहुल मुंबई गए समुद्र दिखा, अरे समुद्र दिखा क्या लहरें थी उसके अंदर, अरे इतना बड़ा विशाल धनुष समुद्र था, अरे हमने बोट में भी बैठ के विहार किया उसके अंदर। कैसे बताएंगे आके अपने गांव में आके लोगों को जिसने कभी समुद्र देखा नहीं है। वैसे नंद बाबा इतने इनोसेंट थे ना बेचारे, उन्होंने बोलना शुरू किया हम वैकुंठ जाके देखे है। अरे सब ग्वाल बाल बच्चे बोलते हैं, अरे हमने क्या अपराध किया है, हमने कौन सा पाप किया है, हमें भी वैकुंठ दर्शन कराओ। तो कृष्ण बोलते हैं, अरे भैया तुम लोग क्यों जिद करते हो, तुमको मजा नहीं आएगा वहाँ पर। अरे मजा वजा की बात नहीं, बाबा को दिखाओ हमें भी दिखाओ तो ठीक है, आँख बंद करो। तो वैष्णव में उधर तुरंत वैकुंठ पहुँच गए। अभी देखो हाँ, ज़्यादा वैकुंठ का मैं वर्णन नहीं करूँगा, आप लोगों को ललचाऊंगा नहीं, लेकिन संक्षेप में इतना बड़ा ऐश्वर्य वहाँ पर, इतने बड़े लोग, इतना बड़ा मान सम्मान, इतने बड़े लोग यहाँ बैठ के कुछ लोग गा रहे हैं, उधर बैठ के श्लोक गा रहे हैं, हाँ दास्य रस में एकदम ऐश्वर्य भाव में भगवान का स्तुति किया जा रहा है, और बड़े दूर तक उनके ऊपर कवच लगाया गया लोगों का, पहरेदारों का, उसके बूच में बड़े ऊंचाई के स्थान पर कृष्ण विष्णु बनकर बैठे हुए हैं, राधा रानी लक्ष्मी बनकर उनके साथ बैठे हुए, इतने अलंकार छक 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 पहन के बैठे हुए हैं, दूर कहीं बैठे हुए पहचान रहे सब बाल बाल उनको, अरे हमारो कन्हैया देखो कैसे ठाट से बैठो है। अभी ठीक है, कुछ समय के लिए ठाट से बैठो, आनंद आयो देख के, लेकिन बाद में दिल किया रे मिलना चाहिए उसको, तो जाएगा अपने, जा रहे अपने मूड में, जैसे कैसे जाते हैं ब्रिज में कैसे जाते हैं, अरे कभी भी घुस जाते हैं, क्या है इसमें, अपना ही खाना है, घुसने का प्रयास कर रहे हैं, ए लगे ए चेत क्यों जा रहे हो, क्या कहाँ जा रहे हो, नहीं हमारे कान्हा को मिलना है, अरे कौन कान्हा, कान्हा वाना कोई नहीं यहाँ पर, जो वैकुंठ आदि पति राजा धीराज विष्णु भगवान है ये, और ये लक्ष्मी देवी है, कोई घर का मामला नहीं आपके, तो गांव के देश में थे ना सब लोग, तभी वो कोशिश कर रहे हैं, जूझ रहे हैं उनके साथ, अरे क्या हो रहा है, तो वो बोल रहे हैं कि बहुत देर बाद समझ में आया कि यार ये लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, ये हमको नहीं मिलने देंगे कान्हा को, तो क्या बोल रहे मालूम उनको, अरे कैसो देवता है तुम्हारे वैकुंठ को, अरे मिलने नहीं देते, हमारो देवता देखो ब्रज को, जब चाहे मिलो जब चाहे गले लगाओ, कैसो देवता है तुम्हारो, नहीं चाहिए हमको वैकुंठ, बोर हो गए वो उसी दिन वापस ऐसे बोलने लगे, नहीं जाना हमको रहने यहाँ पर, तो आवाज़ आई आँख बंद करो, आवाज़ आती ही आँख बंद कर दी, बाद में बोले आँख खोलो, तो आँख खोल दी तो वापस जमुना किनारे खड़े सब लोग, अरे जमुना किनारे खड़े आते हुए तुरंत सब लोग ने कृष्ण को गले लगाया, अरे कैसा वैकुंठ यार, बोरिंग काम था बहुत बड़ा, क्यों गए वहाँ पर, बोले कृष्ण ने कहा मैंने बताया था आपको आप बोर हो जाएंगे वहाँ पर, आपको नहीं जचेगा वो, आपने जिद किया, हाँ अभी देखो ग्वाल बाल देखो, अभी कोई समझो गरीब आदमी, हम जाते हैं वृंदावन में घूमने के लिए, लोग कैसे बोलते हैं प्रभु जी अरे बम्बई ले चलो प्रभु हमको बम्बई, गाँव में कहा है कचू है ना यहाँ में, अरे मैंने कहा अरे हम लोग मुंबई छोड़कर यहाँ पर आते दर्शन करने के लिए, अपने मन को शांति देने के लिए, सुकून के लिए, अरे कैसे शांति प्रभु, कहा कर कहा बात कर रहे हो, हमें बम्बई ले चलो भैया, तो हम कहते हैं भाई बम्बई में कुछ नहीं है, और समझो किसी को ले गए बम्बई तो फिर बोट में बैठेगा, समुद्र में जाएगा, गेटवे ऑफ इंडिया जाएगा, इधर जाएगा, हाँ और जाके सब लोगों को बताएगा अरे मैंने ये देखा वो देखा, ग्वाल बाल कैसे हैं, वो वैकुंठ गए ना, उनको वैकुंठ के किसी भी चीज में एक पैसे के भी आकर्षण नहीं था, उन्होंने बताया नहीं बाप रे क्या बढ़िया था, ये बढ़िया था वैसा था, किसी भी चीज को देखकर वो प्रभावित नहीं हुए, उनका उधर भी लक्ष्य था ना, उनका जो मन था वो कृष्ण पर ही था, उनको कृष्ण को ही वहां पर जाके मिलना था बस, और कृष्ण को नहीं मिलने मिला, बोला हेल विद दिस वैकुंठा, वी डोंट वांट वैकुंठा, वी वांट टू कम बैक, जहां हमारो दिल को सितारा नहीं है वहां पर क्या करना है, कोई जरूरत नहीं वैकुंठ के ऐश्वर्य की, ये ब्रिजवासियों का भाव है, इसी पर रिझते हमारे कन्हैया, इसी भाव पर रिझते हैं, अरे उनको कुछ नहीं चाहिए एक भगवान के अलावा, कुछ नहीं चाहिए उनको, ना ऐश्वर्य चाहिए, ना धन चाहिए, ना औरत चाहिए, ना सम्मान चाहिए, ना कोई पद चाहिए, उनको केवल कृष्ण चाहिए, इसलिए उसको ब्रज कहते हैं, हाँ न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश कामय, कुछ नहीं चाहिए उनको केवल कृष्ण चाहिए। तो उसके बाद में ये बात पर हम चिंतन करना चाहेंगे कि ये क्या है, क्या ब्रज, कैसे हम लोग वहाँ के होंगे, कब बनेंगे वहाँ के, और वैसे भी ब्रज तो एक माधुर्य का भंडार है, वहाँ पर ऐश्वर्य संपन्नता तो रहती है लेकिन ऐश्वर्य पर किसी का ध्यान नहीं रहता है वहाँ पर। देखो आप समझो बहुत धनी हो, आपके पास बहुत करोड़ों रुपया है, आपके पास बहुत गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं, हर शहर में एक बंगला है आपका, हो सकता है, लेकिन आपका ध्यान कहाँ है, उन बंगलों पर है, बैंक बैलेंस पे है, अलंकारों पे है, या आपका ध्यान कृष्ण पर है, ये बहुत अलग बात है, अलग विषय है। आमतौर पे मटेरियल वर्ल्ड में हमारा ध्यान अपने ऐश्वर्य पे रहता है, हम लोग हमेशा कॉन्शियस रहते हैं कि आई एम अ रिच मैन, आई एम अ वेरी ब्यूटीफुल मैन, आई एम अ वेरी इन्फ्लुएंशियल मैन, आई एम अ वेरी फेमस मैन, मैं ये हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, बहुत लोग मुझे सम्मान देते हैं, इसका हम लोग ना हमेशा कॉन्शियस रहते हैं, मतलब हमारा जो कॉन्शियसनेस है ना वो ऐश्वर्य के इर्द गिर्द रहता है, वी आर ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट आवर ऑपुलेंस, और ये ब्रज के लिए बिल्कुल क्या कहते हैं इमिसिबल, हमारे साइंस के लैंग्वेज में क्या कहते हैं इमिसिबल, ये मिलता जुलता नहीं है, उसके साथ मिक्स नहीं होता है, इट इज नॉट पॉसिबल टू मिक्स दिस विद ब्रज भाव। ब्रज भाव यानी वो संत लोग कहते हैं ब्रज के विषय को छोड़े बिना ब्रज में एंट्री नहीं मिल सकती, ये विषयों को लेकर, विषय वासनाओं को लेकर, भोग के वासनाओं को लेकर हम ब्रज में प्रवेश करेंगे तो ब्रज अपनी जगह पे रहेगा, और हम अपनी जगह पर रहेंगे, तो कम से कम जब ब्रज में जाएंगे ना, तो हम लोगों को ये सारी भावनाओं को या अवेयरनेस को छोड़ के जाना पड़ेगा। और ब्रज जो है ना, ये भोग की भूमि नहीं है, ब्रज ये तप की भूमि है, ब्रज ये प्रेम की भूमि है, ब्रज माधुर्य की भूमि है। वहाँ पर आपको अगर सही आस्वादन लेना है तो आपको प्रेम का, माधुर्य का, इसी का मिलेगा। और वहाँ जाकर कोई पनीर खाने का प्रयास करेगा, पनीर को कहाँ सब्जी मिल रही है और कहाँ पर अच्छा रूम मिल रहा है और कहाँ पर बढ़िया साधन है, कहाँ पर बढ़िया ये है, उसी को देखकर जाओगे ना तो ब्रज कहीं और रहेगा, हम कहीं और रहेंगे। ऐसा नहीं कि सुविधा लेना अपराध है, लेकिन सुविधा लेना चाहिए कृष्ण पर ध्यान करने के लिए, अनुकूल वातावरण निर्माण करने के लिए। बस सुविधा सुविधा के लिए लेना नहीं है, सुविधा लेना है कृष्ण के ऊपर ध्यान करने के लिए। कृष्ण के ऊपर ध्यान करना, चिंतन करना आसान हो जाए इसलिए सुविधाओं को लेना है। केवल हम अमीर है इसलिए हमको सुविधा, हमारी ये स्टैंडर्ड है, स्टेटस है हमारा, इसलिए वो सुविधा लेना एक चीज है, और वो सुविधा जरूरत के अनुसार लेकर कृष्ण के लिए ध्यान कैसे कर सकते हैं, ये विचार होगा तो आप शायद ब्रज के माधुर्य को स्पर्श कर सकते हैं। अभी वो उत्तराखंड में इतनी बड़ी आपदा क्यों हुई, आप सब लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि उत्तराखंड जो है तप की भूमि है वो, और उस तप की भूमि में लोगों ने पनीर खाना शुरू किया, पराठा खाना शुरू किया, हाँ बाद में बियर पीना शुरू कर दिया, बाद में हनीमून मनाना शुरू कर दिया, ऐसे ऐसे होटल बने वहाँ पर, ऐसे ऐश्वर्य सुविधा वाले, आओ मजा करो, हाँ नेचर का एंजॉय करो। अरे गंगा जी को देखते नहीं रहे, बोले कितना बढ़िया आनंद का वातावरण है, देखो एंजॉय करो, ड्रिंक बियर हियर, कम विथ योर फ्रेशली मैरिड वाइफ एंड एंजॉय। तो जहाँ तप की भूमि है और वहाँ पर भोग की व्यवस्था होने लगी, भोग होने लगा, तो क्या प्रकृति चुप बैठेगी? प्रकृति ने सब धुआंधार कर दिया, काम पूरा तबाह कर दिया उसको। अरे आश्रम के आश्रम खिलौने की तरह नदी में गिर गए, बह गए। तो अगर वो उत्तराखंड वाली भूमि को आपको टिका के रखना है ना, तो केवल तप की भावना से जाओ वहां पर, केवल जरूरतों को पूरा करते हुए वहां पर जाओ, और वहां पर केदारनाथ बद्रीनाथ पे भगवान पर ध्यान करो, तप करो, तपस्या करो, कम से कम खाओ, अधिक से अधिक समय जगे रहो, सुबह जल्दी जल्दी उठकर गंगा किनारे तपस्या करो, तब आपका वो बद्रीनाथ चार धाम की यात्रा सफल हो जाएगी। उसी तरह से अगर ब्रज में जाना है, अरे जहां पर जो बिकता है वो खरीदने का कोशिश करो यार, वहां पर जाके फिर वो पनीर और वो सब बढ़िया बढ़िया माल खाने का कोशिश करेंगे, कहाँ भंडारा, भंडारे कहाँ फट रहे वहाँ देखने लगेंगे, तो कहाँ ब्रज और कहाँ हम, क्या कनेक्शन है उसका? तो इस भाव को बनाना बहुत जरूरी है। देखो ब्रज आप लोगों के बहुत पास में है और कभी भी जा सकते हैं, 3 घंटे में पहुंच सकते हैं, लेकिन प्रवेश तब मिलेगा जब सेवा भाव होगा, प्रवेश तब मिलेगा जब तप की प्रवृत्ति होगी, प्रवेश तब मिलेगा जब भोग की प्रवृत्ति त्याग के हम जाने का प्रयास करेंगे, सेवा के भाव से अंदर प्रवेश करेंगे। आउट कैन आई सर्व, गोपी भरतुर पदकमल योर, दास दास अनुदास, ये कब भावना अपनाएंगे तब जाकर हमें ब्रज में प्रवेश मिलेगा। कबे हम बुझा बोसे जुगल प्रीति, हाँ विषया छाड़िया कबे, कब मैं विषयों को त्याग करूंगा, कब मुझे उसके बाद ब्रज का दर्शन होगा, कब मैं जुगल जोड़ी को दर्शन करूंगा उसके बाद में। क्या कह रहे हैं नरोत्तम ठाकुर जी, विषया छाड़िया कभी, ये कब मैं विषयों को छोड़ पाऊंगा, ये आसक्तियां, ये लोभ, ये जो बंधन जो है, ये कब मैं छोड़ पाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि उसको छोड़ने के बाद ही श्री कृष्ण का दर्शन होगा, ब्रज भूमि का दर्शन होगा। देखो आप ध्यान से सोचिए, भगवान कृष्ण को ब्रह्मा जी दर्शन कर रहे हैं, पहले बछड़े चुराए, फिर ग्वाल बाल चुराए, फिर मजा देखने के लिए नीचे चले गए, कृष्ण को ही देख रहे हैं ना वो। लेकिन जब उनको पता चला सही इस जगह पर कि ये भगवान है ये, तो जब उनका ऐश्वर्य भाव और ऐश्वर्य से मिक्स हुआ हुआ मान यानी अभिमान उनका जब खंडन हुआ ना उसका, आपको समझ में आ रहा है ना, जब वो ऐश्वर्य भाव से अपने अधिकार के अभिमान से भगवान को देख रहे हैं, उनकी परीक्षा ले रहे हैं, उनके बछड़े चुरा रहे हैं, बहुत सारी गलत काम कर रहे हैं, उसके बाद उनको अनुभूति होती है, अरे बाप रे मैं तो आग से खेल रहा हूँ, सत्य तो ये, तो यही मेरे भगवान है, तो एक नम्र हो गया ना, ऐश्वर्य का अहंकार टूट गया उनका, ऐश्वर्य को भगवान ने तो चकनाचूर कर दिया पूरा अहंकार को, फिर नम्र हो गए। अरे जब नम्र होकर भगवान के चरणों में झुके वो पश्चाताप की भावना से, प्रार्थना की भावना से, तब जाकर उनको कृष्ण का वृंदावन का दर्शन हुआ, तब उन्होंने कल्प वृक्ष को अप्रिशिएट किया, तब उन्होंने ब्रज भूमि के कणों को अप्रिशिएट किया, तब उन्होंने ब्रज की गायों को देखा, भगवान ने उनको तब वो दर्शन दिया। नहीं तो पहले भी ब्रज में आकर ब्रज के अंदर ही भगवान को देख रहे थे वो, लेकिन कुछ नहीं दिखा उनको, क्योंकि ना वो अहंकार का कवच था उनके ऊपर। ब्रज में होते हुए भी उनको साक्षात ब्रज का वास्तविक रूप का दर्शन नहीं हुआ, वो तब हुआ जब उनका मूड चेंज हो गया। जब मूड चेंज हो गया तो ब्रज में होने होते हुए भी ब्रज का दर्शन हुआ, ब्रज की महिमा का दर्शन हुआ। तब उसके बाद ब्रह्मा रोए रोए रोए, इतना रोए, एक कुंड बन गया वहां पर ब्रह्म कुंड नाम का। फिर ब्रह्मा ने पूरे 84 कोस ब्रज का दंडोती परिक्रमा किया, रज का आश्रय लिया, तब जाके माफी हुई उनकी। उनका रंग भी बदल गया था इस अपराध की वजह से, वो काले हो गए थे। ब्रज 84 कोस की जब दंडोती परिक्रमा की उन्होंने, तो धीरे 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 उनको अपना तेज प्राप्त हो गया। तो इसलिए साधु क्या कहते हैं, अरे अपने शहर वाले रजोगुण को यहां पर लेके मत आना, कुछ नहीं दिखेगा इधर आपको, कुछ नहीं दिखेगा। कुछ देखना है तो उस अभिमान को, उस अहंकार को, उस ऐश्वर्य भाव को छोड़ के आओ ब्रज में, तब कुछ कुछ ग्लिम्स दिखेगा आपको, तब झलक दिखाई पड़ेगी कृष्ण भगवान की। तो अभी हमने शुरू किया था लाभ भगवान शिव जी से, अंत भी शिव जी पर करेंगे। हम थोड़ा चिंतन करेंगे गोपेश्वर महादेव के ऊपर, क्या उनका भाव है। देखो जब भगवान का दर्शन हुआ ना मोहिनी रूप का, कैसे भागे वो उनके पीछे। और मोहिनी भी बड़ी चालाक थी, उसने क्या किया, अरे वो जो ऋषि मुनि सब भोग त्याग करके तपस्या वैराग्य में बैठकर उनका भजन कर रहे हैं, अपने इष्ट का शिवजी महाराज का, अरे उनके बीच में से भागी ये कपड़े उतारते उतारते। अभी हम और आप होते ना तो अरे यहाँ से नहीं भागना भैया, ये तो हमारे वर्शिप करने वाले लोग हैं, ये हमको इष्ट मानने वाले लोग हैं, ये हमारी ही पूजा कर रहे हैं, हम ही उनके आराध्य हैं, अरे हम ही सब कुछ है, चलो भाई राउंड लेके भागते हैं उसके पीछे। अरे उसके बीच में से भाग गए वो, क्यों, उनको कहाँ परवाह है कौन उनको गुरु मानता है, कौन उनकी शिक्षा लेता है, वो तो अपने भगवान के पीछे पागल हैं, उनको परवाह नहीं है कि भाई ये 50 ऋषियों ने मुझे छोड़ दिया, अरे बाप रे ये हमारे आराध्य नहीं बन सकते, हम तो विरक्त होने के लिए आए थे, ये तो हमारे भगवान भाग रहे नंगे औरत के पीछे, ऐसा नहीं सोच रहे वो। उनको वो गुरुत्व और शिष्य इनसे आसक्ति नहीं है, उनको भगवान से आसक्ति है, ये उनकी विरक्ति है। कुछ भी अपने ऐश्वर्य से उनको आसक्ति नहीं है, वो तो केवल भगवान से जुड़े हुए हैं। तो क्या है उनका स्वर, उनको भोले बाबा कहते हैं, क्या क्यों, एकदम सरल स्वभाव के वो, एकदम सरल, थोड़ा सा कुछ कर लिया तो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं, जरा सा कुछ कर लिया तो बड़े गुस्सा हो जाते हैं, ये सरल आदमी का लक्षण है। उनका गुस्सा भी सरल होता है, उनका प्रेम भी सरल होता है, सब कुछ सरल होता है, नो कॉम्प्लिकेशंस। हाँ उनकी नम्रता देखो, वो ना उनका ऐसा है ना उनका प्रेम जो है ना भगवान के प्रति, वो एक उनके व्यक्तित्व का अलग विषय है। जैसे मैं हूँ अभी, मैं मुझे आप मेरा विचार कीजिए, मैं भी डॉक्टर हूँ, मैं भक्ति वेदांत का वो संचालक हूँ, मैं काउंसलर हूँ, ऐसे बहुत सारे पोजीशंस हैं, लेकिन वो मेरा एक ऑफिशियल जीवन है। हाँ मैं भी परिवार को संभालने के लिए मेरा व्यवसाय है, वो शायद मेरी नौकरी है, इट्स लाइक अ प्रोफेशनल लाइफ यू नो। बट एक मेरा निजी जीवन है कि मैं आप लोगों से प्रेम करता हूँ, मैं ब्रज पर प्रेम करता हूँ, मुझे बरसाना बहुत अच्छा लगता है, मुझे कथा करना अच्छा लगता है। तो हर एक व्यक्ति के एक दो जीवन होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल लाइफ जब वो कर्तव्य काम सब उसमें आता है, और एक होता है उसका अंदर का जीवन इंटरनल लाइफ, उसका भाव, उसका प्रेम, उसके सगे संबंधी, उसका निजी जीवन, निजी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स होता है ना। तो हर एक देवता का एक एक्सटर्नल ड्यूटीफुल लाइफ होता है, हाँ कंसर्न विद ड्यूटी, और एक होता है उनका निजी वैयक्तिक व्यक्तिगत जीवन। तो हमारे शिव जी कैसे हैं, महादेव हैं वो, अरे ब्रह्मा जी ने उनको जन्म दिया ना, ब्रह्मा जी भी उनका पूजन करते हैं महादेव के रूप में, सोचो आप कितना बड़ा पोजिशन है उनका। ब्रज में कैसे आते हैं, अरे एक भिक्षुक बनकर आते, मैया ठोकरा देती है उनको, ए चले बाबा दर्शन नहीं देंगे, तुम तो कंस के आदमी हो, चले जाओ यहाँ से, नम्रता देखो, अभी आपका कोई अपमान करेगा आप बड़े आदमी होंगे ना, ऐसा तुरंत फन उठाएंगे, जानते हूँ मैं कौन हूँ, मैं महादेव हूँ ऐसा बोलेंगे आप। तो ये इन्होंने कुछ बोला नहीं, वो जानते हैं अरे अपना ठाकुर जिसके लिए आया हूँ मैं, वो ठाकुर इसके गोद में बंद है, ठाकुर को कैद करके रखा है गोद में, मैं क्या बोलूंगा मैया के सामने। अरे नम्रता से बेचारे ना, महादेव होते हुए भी जो तांडव करके पूरे विश्व का नाश कर सकते हैं, वो हाथ जोड़ के रोते रोते चले गए और रोते ही बैठ गए बच्चे की तरह आशीश्वर मन में। देखो पर्सनालिटी को सोचो आप, कैसी पर्सनालिटी है, सारा बल है उनके अंदर, सारी शक्ति है नष्ट करने की, वो पूरे सब कुछ नष्ट कर सकते हैं अपना तांडव करके, लेकिन कैसे गए वो, ऐसे हाथ जोड़ के गए और रो रहे वहां बैठ के। और फिर देखो क्या हुआ, फिर वो मैया बोलती है, अरे वो पूर्णमासी आके बोलती है, अरे नहीं नहीं वो बहुत बड़े बाबा है, वो दो दूर से आए हैं, बड़े सिद्ध बाबा है, इनकी कृपा से बड़ा चमत्कार होता है, अरे बुला लो उनको। तो बुलाने गए, अरे भाग के गए, ऐसे नहीं बोले मैं क्यों जाऊं, इसने भगाया था ना, रोने दो बच्चे को, मैं क्यों जाऊं, कोई मान नहीं कुछ सम्मान नहीं, ऐसे गए भाई सेवा करने के लिए आए थे, सेवा करने को आए ना, तो सेवा मिल रही तो क्यों छोड़ेंगे उसको। देखो भाव में कितनी कंसिस्टेंसी है, अपमान हो रहा है, अपयश प्राप्त हो रहा है, दुख प्राप्त हो रहा है, रोना पड़ रहा है, फिर भी जो भाव लेकर ब्रज में आए थे उस भाव का त्याग नहीं कर रहे, इसको कहते हैं फोकस। ये शिव जी हमारे, और उनके प्रोफेशनल ड्यूटी में और पर्सनल लाइफ में बहुत क्लियर डिमार्केशन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वो ब्रज में आकर अपना ऐश्वर्य वाला भाव दिखाते नहीं है, वो कि मैं कौन हूँ। हम लोग कैसे रहते ना, देखो हम लोग ना किधर भी गाँव में गए ना, समझो किधर भी गांव में ब्रज के अंदर गए, हमारे अंदर एक ऐसा एक फोर्स होता है, फोर्स, वो फोर्स कैसा होता है, हम लोग ना कैसा भी करके लोगों को बताते हैं मैं ना डॉक्टर हूँ मुंबई का ना, मैं डॉक्टर हूँ, वो बरसाने वाला कैंप है ना उसका मैं प्रमुख हूँ कैसे भी करके हमारे बात में वो बात आ जाती है, आप कहाँ से आए हो, तो तुरंत बोलेंगे मैं डॉक्टर हूँ। मतलब अपना जो ऐश्वर्य है ना वो हम लोग छुपा ही नहीं सकते, वो मिक्सचर हो जाता है उसका किधर किधर। लेकिन शिवजी महाराज देखो इतनी सारी घटनाएं घटी एक ही प्रसंग में, लेकिन उनका फोकस बदला नहीं, देयर इज अ क्लियर डिमार्केशन, हियर आई एम नॉट कम एज महादेव, मैं यहाँ पर महादेव की कैपेसिटी में नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर दास 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 अनुदास बनकर इनकी सेवा करने आया हूँ, इनको प्रसन्न करने आया हूँ, उल्टा मैं मेरा ऐश्वर्य छुपाने के भाव से आया हूँ, आई वॉन्ट टू हाइड माई ओपुलेंस ओवर हियर, दैट इज द मूड ऑफ शिवा। सो हमें इससे प्रेरणा लेना चाहिए, ब्रज में जाते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि अपने ऐश्वर्य को डायरेक्टली इनडायरेक्टली छोटे मोटे तरीके से कभी बताने का कोशिश नहीं करना चाहिए। गो एज अ यकश्चित प्रसन्न व्यक्ति, मतलब यकश्चित का मतलब क्या होता है, हु हैज नो वैल्यू, हु हैज नो पोजिशन, हु हैज नो इम्पोर्टेंस, हु हैज नो पावर और इन्फ्लुएंस, ऐसे ना, कम से कम है पावर बम्बई में बहुत सारी, लेकिन वहाँ पर वो एक्सप्रेस नहीं करना है जाकर, वहाँ पर सब कुछ छोड़ के जाना है, तब हमारा ब्रजभूमि में जाने का जो पर्पज़ है ना वो सक्सेसफुल हो जाएगा। और जो माधुर्य धाम के मालिक और माधुर्य धाम की मालकिन यहाँ पर बैठी है, उनकी हम पर कृपा हो जाएगी, तो फिर प्रेम की दीपक प्रज्वलित हो जाएगा, प्रेम का दीपक जलेगा, उसका प्रकाश हृदय को प्रकाशित करेगा, सारे कलमश नष्ट हो जाएंगे, उस प्रेम के दीपक के प्रकाश में जीवन धन्य हो जाएगा। हरे कृष्णा। और इसका रहस्य क्या है, इधर और एक लिखा है, एज अवर साधना डीपन्स देयर विल अराइज क्लियर डिमार्केशन बिटवीन अवर प्रोफेशनल लाइफ एंड अवर पर्सनल लाइफ एज अ स्पिरिट सोल एंड अवर पर्सनल ऑरा विल कवर द अवर एंटायर एग्जिस्टेंस इंक्लूडिंग अवर प्रोफेशनल लाइफ। मतलब क्या, जब हमारी साधना गहरी होगी ना, प्रामाणिक होगी, गहरी होगी, एकाग्र होगी, तो ये जो हमारा भक्ति जीवन है और हमारा भौतिक जीवन है, इसमें बहुत डिमार्केशन क्लियर होने लगेगा, इट विल बी क्लैरिफाइड, इट विल बी टू डिफरेंट एंटिटीज़। अभी कैसा है, मिक्सचर है पूरा, खिचड़ी है पूरी अभी, वो भक्ति जीवन ऐसा अलग हो जाएगा, और फिर भक्ति जीवन जब प्रभावी हो जाएगा ना, स्ट्रांग हो जाएगा, तो भक्ति जीवन ये जो हमारा भौतिक जीवन है उसको पूरा कवर कर देगा, आच्छादित कर देगा, इट विल कम्प्लीटली कवर, एंड योर प्रोफेशनल लाइफ एंड योर भक्ति लाइफ विल बिकम भक्ति लाइफ ओनली. टुडे दे आर डिफरेंट. द डे भक्ति लाइफ विल बिकम डीपन एंड स्ट्रांग, दैट डे इवन योर प्रोफेशनल एंड वर्ल्डली लाइफ विल बी कंप्लीटली कवर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड विथ योर भक्ति भाव. तो आइए हम आपको सबको, मेरे लिए भी शुभ प्रार्थना करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो ये जीवन है, लेट इट गेट ओवरवेलम्ड विद द इनर भक्ति दैट वी हैव. लेट अवर प्रोफेशनल लाइफ, वर्ल्डली लाइफ, फैमिली लाइफ गेट कंप्लीटली ओवरवेलम्ड, कवर्ड, मेस्मराइज विद आवर भक्ति. एंड प्रभुपाद ने कैसे, अरे वो पर्स में से ना एक नोट निकाला किसी को कुछ पेमेंट करने के लिए, कोई देख रहा था उसको कैसे नोट निकाल रहे हैं. वो एक भक्त जो है ना, वो केवल वो नोट कैसे निकाला उसको देखकर भक्त बन गया. एक व्यक्ति ने देखा प्रभुपाद जी को ऐसे वो कुछ जल पान कर रहे हैं, इतना ग्रेसफुली जल पान किया कि उसको देखकर एक प्रभुपाद डिसाइपल बन गया, भक्त बन गया वो. क्योंकि प्रभुपाद जी का जीवन ऐसा पूरा ओवरवेल्म था भक्ति से कि वो जो भी कुछ करते थे ना, कुछ प्रसाद ले रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं किसी से, हाँ जिस प्रकार से नोट निकाल रहे हैं, जिस पर जल पान कर रहे हैं, जिस प्रकार से चल रहे हैं, अरे हर एक कण कण की गति थी उनकी ना, वो भक्तिमय थी. इसलिए उनको ना देख के ही लोग भक्त बनते थे, देख के ही, केवल उनके सानिध्य में रहकर केवल लोग भक्त बनते थे. जस्ट बाय द ऑरा ऑफ हिज पर्सनल डिवोशनल लाइफ वॉज सो स्ट्रांग दैट नॉट ओनली ही वॉज ओवरवेल्म्ड बट दोज हु केम इन कॉन्टेक्ट विथ हिम देवर ऑल्सो ओवरवेल्म्ड. हरे कृष्णा. थोड़ा मैं पांडवा निर्जला एकादशी के ऊपर बात करूंगा, मुझे वो रिक्वेस्ट किया गया था. तो आप लोगों, सब लोगों को मेरी विनती है कि